कोई फायदा नहीं पहुंचा जो पिछले महीने में कहा गया है.
But I feel blessed anyway.
लेकिन मुझे बहुत बरकत मिली है.
I know you were being fed and God has been with us.
और मुझे पता है कि आपको रूहानी खुराक मिली है और खुदा हमारे साथ है.
Ephesians 1 takes us to the top of a mountain.
इफिसियों का पहला बाप हमें पहाड़ की उस बुलंदी पर ले जाता है.
And we are seated in heavenly places. We feel like we're almost there.
और हम आसमानी मकामों पर बैठे हुए हैं और हम सोचते हैं कि हाँ हम वहां पर हैं.
And Ephesians 2 is a sudden change.
और इफिसियों दो बाप यक वक्त में क्या है जी, तब्दील करती है सारी बात को.
Ephesians 2 is a reminder of how far down we were before we were seated in heavenly places.
इफिसियों दो बाप हमें याद दिलाता है कि हम कितने गिरे हुए थे इससे पहले के सर बुलंद किए जाएं.
For instance, in Ephesians 2:11 it says, "Remember that at one time you were Gentiles in the flesh."
और जब हम इफिसियों दो बाप उसकी 11 को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि तुम्हें याद है कि तुम क्या थे जी, जब गैर कौम थे.
Verse 12, remember that you were at that time separated from Christ.
और याद रखो कि तुम मसीह से जुदा थे.
Having no hope and without God in the world.
और क्या लिखा है कि तुम्हारे पास कुछ उम्मीद नहीं थी इस दुनिया में.
The Apostle Paul did this frequently in his public speaking.
जैसा कि पालूस रसूल अपनी रोजमर्रा की उस गुफ्तगु में जो वो लोगों के दरमियान करता था.
He would be preaching the gospel and suddenly he would begin to give his testimony.
और वो अंजील की बिशारत देते देते एक मिनट में क्या करता था जी, अपनी गवाही शेयर करना शुरू कर देता था.
And he said, "Oh, before Christ, I was the chief of sinners."
और वो कहना शुरू करता है कि मसीह से पहले मैं सबसे बड़ा गुनाहगार था.
I was the worst of all people.
और मैं सबसे भयानक था तमाम लोगों में.
I was a persecutor of those that followed Jesus.
मैं उनको सताने वाला था जो मसीह के पीछे चलते थे.
One or more died because of what I was doing.
और मेरे इस तमाम अमलों से बथेरों ने मौत का मजा चखा.
And in Ephesians 2:1 he says, "You're like that too."
और इफिसियों 2 उसकी 1 में कहता है तुम उन जैसे ही थे.
You were dead in trespasses and sins.
जब तुम अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे.
And in Ephesians 2:1-4 we learn of the deadness of humanity before they meet Jesus.
और इफिसियों 1:2 बाप की पहली 4 आयात में जब हम देखते हैं तो बनी नू इंसान की मुर्दगी को देखते हैं कि वो कितने मुर्दा थे.
This is not who we are now if we're in Christ.
अगर हम मसीह में हैं तो हम ये नहीं कि हम मुर्दा हैं.
At our English camps in the Czech Republic, we want Czech atheists to hear 2 testimonies every day.
और हमारे जो Czech Republic में English camp था उसमें हम जब तालीम देते थे तो 2 गवाहियां शेयर की जाती थी हर क्लास में.
And a testimony typically starts out, "Before I met Jesus, this is what my life was like."
और वो गवाही इस तरह होती थी कि इससे पहले मैं यीशु से मिलता मैं ये और ऐसा था.
I was lost. I was a sinner. I was confused. I was out of any direction.
मैं गुमशुदा था. मैं गुनाह में था. मैं रास्ता भूला हुआ था. मुझे कुछ पता नहीं था. मैं गुमराह था मसीह को जानने से पहले.
And this right here in Ephesians 2 is that part of the testimony.
और यहाँ पर इस गवाही को जब देखते हैं इफिसियों के 2 बाप की पहली 4 आयात को, ये वो गवाही का हिस्सा है.
A testimony goes on to say, "But then God began to speak to me, and He sought me, and He convicted me, and He brought me to Himself."
और तब वो गवाही देते-देते कहता है, "मगर खुदा ने मेरी तलाश की, वो मुझे मिला, वो उसने मुझे रहाई दी, और मेरे अंदर तब्दीली आना शुरू हुई."
And life has been so rich in Jesus Christ since then. That's the third part of the testimony.
और वो अपनी गवाही में इस बात को दर्ज करता है कि मसीह की मोहब्बत में खुदा की जो दौलत की रहमत है वो बहुत ज्यादा है.
It's good to remember. It's good to remember.
ये बहुत भली बात है कि हम याद रखें.
to appreciate what Jesus has done in your life, it's good to remember where you've come from.
इस बात के शुक्रगुजार रहे कि हम कहां से कहां आए हैं कि यीशु ने हमारे लिए क्या किया है.
You will be more thankful for what Christ has done in your life when you realize.
जब हम इस बात का तसव्वुर करेंगे तो हम इस बात में और ज्यादा ईमानदार ठहरेंगे कि हम कौन थे और क्या हैं.
And he says this is really the condition of all humanity.
और वो कहता है कि ये बनीनु इंसान की हालत है जो तमाम बनीनु इंसान है.
You were dead to healthy boundaries.
और वो कहता है कि तुम मुर्दा थे और मुर्दगी की हालत में उस हदबंदी में थे.
You were dead in trespasses.
कसूरों के सबब से मुर्दा थे.
Sometimes you see a fence that says no trespassing.
और यहाँ पर वहां पर क्या लिखा होता है जी, बहुत दफा जमीन और जायदाद के इर्द गिर्द के यहाँ पर आना ममनू है.
To many people, a sign like that says, I feel like I'm in prison and I just gotta get on the other side.
और जब इस तरह के साइन को या इश्तहार को बोर्ड को देखते हैं कि इसमें दाखिल होना ममनू है तो बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर कैदी नहीं होना चाहता.
But God's no trespassing signs are for our safety.
और लेकिन खुदा ने जो साइन हमारे लिए मुकरर किया है कि इसमें दाखिल नहीं होना, ये हमारा तहफ्फुज है.
If you have a little child, a toddler, and if you're up on the, you know, the second floor, you have a little barrier so the child doesn't fall down.
अगर आपके घर में छोटा बच्चा हो और दूसरी मंजिल पर रहते हो तो आप अपने बच्चे को महफूज करने के लिए अपनी जो सीढ़ियां हैं उसका रास्ता बंद रखेंगे, कहीं वो सीढ़ियों से गिर ना जाए.
And God has given us in our hearts and in his word moral fences.
और खुदा ने अपने कलाम में हम सब के लिए बहुत सी क्या है जी, हद बंदियां मुकरर की गई हैं ताकि हम उसमें से गिर ना जाएं.
And the spirit of the world today is lawlessness. It says we will not have anybody tell us we can't go wherever we want to.
और जिस दुनिया में, जिस दौर में हम जिंदगी बसर कर रहे हैं उनमें जो रूह पाई जाती है वो नाफरमानी की और क्या है जी, हसद पसंदी की रूह पाई जाती है, जो कहते हैं कि हमें ना बताओ कि कैसे जिंदगी बसर करते
हैं. In the past we were dead in trespasses and in sins.
और क्या लिखा है कि जब कसूरों के सबब से, गुनाहों के सबब से मुर्दा थे.
God has a target for our lives.
खुदा हमारे लिए एक क्या है जी, निशाना रखता है, हदफ रखता है.
He has a goal or an aim or a purpose for us.
उसका हमारे लिए एक मकसद है, हमारे लिए एक मंसूबा है, एक एम है.
And to sin is just to fall very short of that target, of that goal.
और उस निशाने में खुदा नहीं चाहता कि हम उस निशाने से हट जाएं और गुनाह के शिकार हों.
That's the spirit of the age also.
The spirit of the current age. Okay. ये है जी रोजमर्रा के दौर में लोगों का रवैया कि वो क्या है जी, गुनाह के मुतहद है.
I live in a major, in a town with a major university.
मैं जिस टाउन में, जिस शहर में रहता हूँ उसमें एक मेजर यूनिवर्सिटी है.
And the biggest problem at that university is most students have no hope and direction. They don't know if they have any reason to be at school.
और उस यूनिवर्सिटी में जो ज्यादातर लोगों की तादाद नौजवानों की है वो क्या है, उनको पता ही नहीं कि उनकी जिंदगी का हदफ या मकसद क्या है, इसलिए वो आवारा करते हैं.
So we're dead, we're dead to the fences, we're dead to direction. The deadness even can become demonic.
और ये मुर्दगी क्या है जी, गुनाह की तरफ से हमें ममनू करती है, हदबंदी करती है. और ये मुर्दगी क्या हो सकती है, बदरू गिरफ्तार भी हो सकती है.
Following the prince of the power of the air, the spirit at work in the sons of disobedience.
और जब पढ़ते हैं कि तुम को लिखा क्या है जी कि हवा की अमलदारी के हाकम यानी उस रूह की पैरवी करते थे जो नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है.
First Timothy chapter 4 verse 1 predicts an increase in demonic influence in the last days before Christ's return.
पहला तिमोथियुस उसका चार बाब जब हम उसकी पहली आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि क्या होगा कि रूह फरमाता है कि आइंदा जमाने में बाज लोग गुमराह होकर शैतान की रूहों के क्या होंगे जी तालीम के ताबिया हो जाएंगे.
The majority of the movies coming out of Hollywood, California have no room for God, but they're full of spiritism.
और हॉलीवुड की जो मूवियां बन रही हैं कैलिफोर्निया में उन मूवियों के बनाने के पीछे जब हम देखते हैं तो वो क्या है जी उन फिल्मों में खुदा के लिए कोई जगह नहीं बल्कि क्या है जी शैतान रूहों से भरा हुआ रवैया पाया जाता है.
This deadness is revealed sometimes in what might be called delusional thinking.
और ये मुर्दगी बहुत दफा इस बात में भी पाई जा सकती है कि लोग गुमराही में या क्या सकते हैं जी नकलीपन में या पागलपन में जिंदगी बसर करते हैं. और दूसरे लफ्जों में डिप्रेविटी को जो तर्जमा किया जा सकता है जी मजूली हालत में यानी कि मुर्दा खुदा से जुदा.
We live in the desires of the flesh, carrying out the desires of the body and mind. We're by nature the children of wrath.
और बाइबल मुकद्दस क्या कहती है कि तुम अपने चाल चलन से नाफरमानी के प्रजंत थे और उसकी ख्वाहिशों की पैरवी करते थे जो जिस्मानी है.
And then after reminding us of all of this deadness and the revelation of deadness in the culture and in our own memory, somebody says, but God.
इन सारी बातों को याद दिलाने के बाद कि हमारी मुर्दा हालत हमारे मुर्दा ख्याल हमारे मुर्दा क्या कह सकते हैं कि कल्चर और सोचने के तरीके को सबको बयान करके वो चौथी आयत में कहता है मगर खुदा ने
the God in the richness of his mercy and in the greatness of his love for us.
और चौथी आयत में पूरी में लिखा है मगर खुदा अपने रहम की दौलत से उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की.
Even when we were dead in our trespasses, we were made alive.
जब हम कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया.
The love of Christ to the love of God draws us to himself.
खुदा की मोहब्बत मसीह की मोहब्बत हमें उसकी नजदीकी दिलाती है.
In an early English camp, I had a worship leader who was a young lady.
जब हम उस English camp में थे, तो वहाँ पर एक प्रस्तार्थी जो नौजवान लड़की थी.
And she was doing such a great job leading worship. I assumed that she had probably been raised in a Christian home and in worship environment.
वो खातून प्रस्तुति की जो लीडिंग कर रही थी बड़ी जबरदस्त कर रही थी और मैंने सोचा कि हो सकता है कि ये किसी मसीही खानदान से है मसीही खानदान में इसकी परवरिश हुई होगी.
And so I asked her about this and she said, "Oh, no, I was an atheist up until 2 years ago."
जब मैंने उससे पूछा कि तुम किस खानदान में तुम्हारी परवरिश हुई है उसने कहा नहीं मसीही में नहीं मैं एक एथियस्ट थी और 2 साल पहले यीशु को कबूल मैंने अपना निजात दहिंदा कबूल किया है.
And I said, well, what happened 2 years ago?
फिर मैंने उससे सवाल किया कि 2 साल पहले क्या हुआ.
And she said, I was at an English camp like this one.
उसने कहा कि मैं एक इंग्लिश सिखाने और सीखने वाले कैंप में मौजूद थी जैसे कि आप करते हैं.
And she said at that camp I was told that God is.
उस कैंप में मुझे बताया गया था कि खुदा है.
That he knows my name.
कि वो मेरा नाम जानता है.
That he's thinking about me.
वो मेरे बारे में सोचता है.
And that he loves me.
और वो मुझसे मोहब्बत करता है.
She said that was the greatest thought that had ever entered my mind at any time.
उसने कहा ये वो अजीम ख्याल या सोच थी जो कभी मेरे दिल में दाखिल हुई कि खुदा है वो मुझसे मोहब्बत वो मेरा नाम जानता है वो मुझसे मोहब्बत करता है वो मेरे बारे में सोचता है.
In the greatness of God's love, we were made alive. Christ Jesus.
क्या कहा गया है खुदा के रहम की दौलत ने हम सबको दोबारा जिंदा कर दिया.
Now, the Apostle Paul doesn't write much more of this. I mean, he does say more about it, but the core of this teaching, Paul didn't need to write about because it's found in John chapter 3 from Jesus directly.
यहाँ इस हिस्से में उसने मुख्तसर लिखा है हालांकि वो ज्यादा लिख सकता था लेकिन उसे जरूरत नहीं थी क्योंकि इस सारी तालीम को हम देखते हैं यूहन्ना की इंजील उसके तीन बाब में जब यीशु मसीह ने तालीम दी थी
John chapter 3 tells about a man who was dead.
यूहन्ना तीन बाब बयान करती है कि एक आदमी था जो मुर्दा था रूहानी तौर पर
Walked in darkness.
वो तारीकी में जिंदगी बसर कर रहा था
Was confused and was searching.
और वो तफशीश में था और गुमराह था
But he wasn't an atheist. He was very religious.
वो एथियस नहीं था यानी कि खुदा का इनकारी नहीं बल्कि खुदा परस्त था
So I see John 3 and Ephesians 2 1 to 10 as sort of left page, right page of the same story.
मैं यूहन्ना तीन बाब को और इफिसियों दो बाप उसकी पहली दस आयात को ऐसे देखता हूं कि क्या है जी ये किताब के दो पेज हैं जो रूप रूप पड़े हुए हैं
There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews.
और पुराने यूहन्ना की जील तीन बाप में देखते हैं कि यहूदियों का सरदार नाम जिसका क्या था जी निकोदीमस था
This man came to Jesus by night and said to him,
और ये क्या आया था यीशु मसीह के पास रात को आया
We know that you're a teacher come from God because you can't because of all these signs that you do.
उसने कहा कि हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया क्योंकि जो काम तू करता और दिखाता है वो खुदा ही से है.
No one can do these signs unless God is with him.
और कोई नहीं कर सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो.
And Jesus said to him, "Truly, truly, I say to you, unless you're born again." One cannot see the kingdom of God.
यीशु ने जवाब में उसे कहा मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता.
Nicodemus was as dead as the person described in Ephesians 2.
निकोदीमस भी रूहानी एतबार से मुर्दा था जैसे इफिसियों दो बाब में इस शख्स को बयान किया गया है कि वो रूहानी तौर पर मुर्दा था.
But if you take this massive group of lost dead people, Nicodemus was sort of the better of the lost.
अगर हम मुर्दा लोगों की बड़ी तादाद को देखें जो गुमराह हैं, मरे हुए हैं और क्या हैं जी उन सब के साथ अगर मुआजना निकोदीमस का किया जाए वो मुर्दा तो था लेकिन एक अच्छे मुर्दों में से मुर्दा नजर आता है
As a leader of the Pharisees, he'd taken a vow to just live his life to keep the commandments of God.
फरीसियों का एक सरदार होते हुए उसने वादे किए हुए थे कि मैं उस शरीयत के मुताबिक जिंदगी बसर करूंगा जिसकी मैंने कसम तमाम फरीसियों के सामने ली है
So, Rabbi, we know you're a teacher from God. I know that you're a teacher come from God.
और फरीसी का सरदार निकोदीमस उसे कहता है कि ऐ रब्बी मैं जानता हूं कि तू उस्ताद है और उस्ताद होकर आया है
Jesus says, nah, that's not right.
यीशु मसीह कहता है नहीं नहीं यह दुरुस्त नहीं है
says, no one can see the kingdom of God unless he's born again.
यीशु ने कहा जब तक कोई नए सिरे से पैदा नहीं होगा वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता
Nicodemus, you shouldn't even be surprised at my saying you must be born again.
यीशु मसीह ने उससे कहा कि तुझे हैरान होने की जरूरत नहीं कि मैंने तुझसे कहा कि तुझे नए सिरे से पैदा होने की जरूरत है
Nicodemus claimed that he knew something about God.
निकोदीमस इस बात का इजहार कर रहा था कि ऐलान कर रहा था कि मैं कुछ जानता हूं खुदा के बारे में
Jesus said, no.
यीशु ने कहा तुझे कुछ भी नहीं पता
Until you're born again, you don't understand anything about God.
जब तक तुम नए सिरे से पैदा नहीं होगे तुमको पता ही नहीं खुदा के बारे में उसकी बादशाही के बारे में
I think most people in both my country and in your country claim to really understand who God is.
मैं कह सकता हूं कि आपके मुल्क में और दूसरे मुल्क में जो चेक रिपब्लिक है बहुत से लोग इस बात का इश्तहार तो देते हैं कि वो खुदा को जानते हैं लेकिन हकीकी तौर पर वो नहीं जानते
And these people claim to have the right to say God exists in this form or in that form.
और वो कहते हैं कि जी खुदा इस हालत में जाहिर हुआ खुदा इस हालत में नजर आता है वो अपना ये क्या है जी or the Czech, करते हैं
or the Czech Republic to say God doesn't exist at all.
और यहाँ Czech Republic में कहते हैं कि खुदा है ही नहीं, उसका कोई वजूद ही नहीं, उसकी कोई कोई क्या है जी सबूत ही नहीं.
And Nicodemus was considered the expert's expert, the most expert of all.
Nicodemus को देखें तो वो क्या था जी के बेहतरीन बेहतरीन एक expert और expert से भी बढ़कर क्या है जी गिना जाता था.
Jesus said, "That's not my opinion at all."
यीशु मसीह कहता है कि ये मेरा नजरिया नहीं तेरे लिए.
Jesus said, "You're not qualified to say whether I've come from God."
यीशु कहता है कि तू इस लायक नहीं कि ये बयान दे सके कि मैं खुदा की तरफ से आया हूँ.
Because until you're born again, you're spiritually dead, you're spiritually blind, and you don't understand it.
जब तक तू नए सिरे से पैदा नहीं होगा, तू रूहानी तौर पर मुर्दा है, रूहानी तौर पर अंधा है, इसलिए तुझे नहीं पता तू क्या कह रहा है.
Imagine the president of your country coming and saying to you in the middle of the night, he sought you out in the middle of the night, and he said, I want to discuss with you some of the critical political issues of our nation.
अगर सोचे कि हमारे मुल्क का जो प्रेसिडेंट या कह सकते हैं जी बानी आकर आपसे आधी रात को कहे कि मुझे आपके साथ गुफ्तगू करनी है और बहुत नाजुक मामले आपके साथ शेयर करने हैं जो मुल्क की तलक से हैं.
Imagine saying to him, "No, Mr. President, you're not qualified to discuss political policy."
और आप उसे कहें कि मिस्टर प्रेसिडेंट आप इस लायक नहीं कि आप मेरे साथ कोई क्या हो जी पॉलिटिकल यानी कि सियासी मामला शेयर करो.
Or imagine the headmaster of a school coming to you in the middle of the night wanting advice on how to run the school.
और सोचे कि हेड मास्टर किसी स्कूल का आकर आधी रात आपसे कहे कि जी मुझे मशवरा दो कि मैंने स्कूल को किस तरह चलाना है.
Imagine saying to him, "You're not qualified to discuss school administration."
और आप उसे कहें कि नहीं, आप इस वजारत को जो कर रहे हैं, इस लायक नहीं कि मेरे साथ उसको डिस्कस करें.
He would be insulted and angry.
और वो भी क्या होगा, नाराज होगा और क्या होगा जी, अपनी बेइज्जती महसूस करेगा.
Nicodemus must have felt insulted, but somehow he understood that Jesus cared for him.
निकुदीमस ने भी ऐसा ही महसूस किया होगा, लेकिन उसने एक बात को जाना कि यीशु मसीह उसके लिए आया है.
Consider with me how essential the new birth is.
जरा मेरे साथ देखें कि जो उसकी क्या है जी बुनियादी हकीकत क्या है कि नई पैदाइश क्या है.
Then we understand how important the new birth is because in John 2, this is the or 3, this is the first message from Jesus Christ.
ये बहुत अहम है कि इसे जाने क्योंकि ये वो पहला मैसेज है यूहन्ना की झील में जो 3 बाब में लिखा गया है जो यीशु ने दिया है नई पैदाइश के तलक से.
Later Jesus would teach the golden rule, do unto others as you would have them do to you.
और बाद में यीशु मसीह उसे कहते हैं जी गोल्डन रूल जिसे कहते हैं सुनहरी तालीम देगा कि एक दूसरे के साथ कैसे गुजर बसर करना है, किस तरह एक दूसरे के साथ पेश आना है.
And you can go through and think of all the parables and teachings, but his first message was, "You must be born again."
और उसका सबसे पहला मैसेज यही था कि तुम्हें नए सिरे से पैदा होने की जरूरत है. बाकी तमाम मैसेज एक दूसरे के साथ कैसे मिलना है, कैसा मेलजोल करना है, ये सब बात की बात है.
The importance of the new birth is seen in these words: "No one can see the kingdom of God unless he's born again."
नई पैदाइश का तल्लक इस बात से है कि कोई नए सिरे कोई खुदा की बादशाही को नहीं देख सकता जब तक नए सिरे से पैदा ना हो.
It includes every man and woman of every kind of character.
और इस बयान में हर बंदा, हर औरत, हर कबीला, हर बच्चा शामिल है कि वो खुदा की बादशाही.
Of every social level and nation.
और हर क्या जी मुआशरती लेवल से और हर हकूमती लेवल पर ये बात जाती है.
Employed or unemployed.
नौकरी वाला और बगैर नौकरी के.
There's nothing we are or have that equips us for the kingdom of heaven. We must be born again.
कि जो कुछ हमारा है या हमारे पास है या हम उसे कमाना चाहते हैं हमें इस लायक नहीं बना सकता कि हम खुदा की बादशाही को देख सकें.
We must be born again to see or understand the kingdom of God. We must be born again to enter the kingdom of God.
नए सिरे से पैदा होने से ही हम देख सकेंगे कि खुदा की बादशाही क्या है, और नए सिरे से पैदा होना ही हमको खुदा की बादशाही में दाखिल कर सकता है।
Here I am in Pakistan for the first time at age 73.
यहां पर मैं हूं 73 साल की उम्र में पहली दफा पाकिस्तान में आया हूं।
But I could not buy a plane ticket and arrive at the airport and demand to be let in. I could not buy a plane ticket, fly here and just demand to come in. I needed a passport and visa.
मैं सिर्फ ये नहीं था कि टिकट खरीद के कहता कि जी मुझे पाकिस्तान जाना है और मैं यहाँ पर आ जाता, बल्कि मुझे क्या था जी, पासपोर्ट की जरूरत थी।
Governments claim the right to determine who may cross the borders and enter.
गवर्नमेंट को हक है कि वो इस बात का तायन करे कि कौन किस मुल्क में आ सकता है, जा सकता है।
Jesus said, we read in Revelation 21, nobody will enter except those whose names are written in the Lamb's book of life.
मकाशवा 21वां बाब उसके 27वीं आयत को देखते हैं तो वहां पर लिखा है, वो ही इस लायक ठहरेंगे जिन्होंने बर्रे के लहू से अपने जामों को धोया है।
So, who may enter your home? Can anybody walk in off the street and just barge in and say, I belong here, this is my place?
क्या यहाँ पर कोई आकर आप या कोई और आकर कह सकता है जी ये मेरी जगह है, ये मेरा मकाम है, इसलिए ये मेरा है सब कुछ?
God has his home in heaven and he has a right to say,
लेकिन खुदा के नजरिए के मुताबिक खुदा जिसको इजाजत देता है, जिसको देखता है, उसे कहता है कि हाँ ये इस लायक ठहरा है।
So what is this new birth we read about in Ephesians 2 and John 3?
और ये क्या है नई पैदाइश जो हम यूहन्ना 3 में और इफिसियों 2 में देखते हैं?
It's more than a change of character.
ये सिर्फ क्या है जी, किरदार की तब्दीली की हद तक नहीं है।
I remember recently standing in front of a cottage that had an old well.
मुझे याद है कि मैं एक छोटे से मकान या ढापा जिसे कह सकते हैं, झोपड़ी, उसके सामने खड़ा था और उसके बाहर एक पुराना क्या था जी, कुआं था।
It was a kind with a hand pump.
और वो कुआं क्या था जी, जिसमें से पानी क्या निकलता था जी, हाथी वाला नलका।
Do they have those here?
Yes.
Okay. And I said, does this pump still provide water?
मैंने कहा कि क्या ये हाथी वाला नलका अभी भी पानी देता है?
And the girl with me, her name was Marie, and she said, wow, I'm not sure, I don't know.
जो लड़की मेरे साथ छोटी थी मरिया, उसको मैंने पूछा, उसने कहा मुझे नहीं पता, यकीन नहीं कि ये ऐसा ये पानी दे सकता है या नहीं।
So we went and first of all we had to go get some water and pour it into the well to prime the pump.
और पानी निकालने से पहले हमें क्या किसी चीज तरह से पानी की जरूरत थी कि उस हाथी वाले नलके में पानी डालें ताकि उसको पंप करके उसमें से पानी निकाल सकें।
And we started pumping and water came out.
और हमने उसको घेरना शुरू कर दिया, हाथी चलाना शुरू कर दी और पानी निकलना शुरू हो गया।
Dirty, dark red, filthy water that no one would drink.
गंदा, गदला, लाल जंगाल से भरा हुआ पानी निकलना शुरू हो गया जिसे कोई पीना पसंद नहीं करेगा।
And we pumped and pumped and it never came out clear. It just came out dirty.
हम उसे पंप करते रहे, हाथी को चलाते रहे, लेकिन उसमें से गदला और गंदा और जंग से भरा हुआ पानी निकलता रहा।
What if I had said, I know how to fix this water. We need a can of paint and a paintbrush.
और मैं अगर कहता कि हाँ मैं इसको ठीक कर सकता हूँ, इसके लिए मुझे ब्रश और कैनन पेन रंग के डब्बे की जरूरत होगी ताकि मैं इसे पेंट कर सकूं।
We'll get some paint and we'll paint this outside of this pump so it looks like it's brand new. It'll look great.
और मैं क्या करता हूँ कि इसको बाहर से क्या कर देता हूँ जी, पेंट कर दूंगा ताकि ये बाहर से बड़ा ही चंगा और साफ सुथरा नजर आए कि इसको रंग किया गया है।
But only a fool would paint a pump and hope to get fresh water from it.
सिर्फ बेवकूफ बनता ही क्या करेगा जी कि उस पानी को, उस नलके को रंग करेगा जिसका पानी गदला निकल रहा है कि ये साफ हो जाए।
Mark 7:21 says, out of a person's heart come evil thoughts.
Wow.
Sexual immorality.
मरकस 7 बाब में क्या लिखा है कि आदमी के दिल से नापाक और गंदी और बहुदा बातें निकलती हैं. मरकस 7 बाब उसकी 21वीं आयत से
says all of these vile things come from within, they are what defile you.
और क्या लिखा है 7 बाब उसकी 21वीं आयत को जब पढ़ते हैं तो लिखा है कि आदमी के अंदर से क्या निकलती है, नापाक चीजें निकलती हैं. लिखा है क्योंकि उस यानी आदमी के अंदर से दिल से बुरे ख्याल निकलते हैं, हरामकारियां, चोरियां, खून रेजियां, जनाकारियां, लालच, बदकारी, मकर, शहवत परस्ती, बदनजरी, बदगोई, शेखी, बेवकूफी, सब ये बातें अंदर से निकलती हैं.
We need not an external change with a coat of paint.
हमें क्या है जी, अंदरूनी तब्दीली की जरूरत है, ना के जाहरी तब्दीली की.
We need a change at the very source of life.
हमें तब्दीली क्या है जी, उस शुरुआत से शुरू करने की जरूरत है कि ताकि तब्दीली आए.
So here's where the new birth is.
और नई पैदाइश कैसी है जी?
It's the giving of a whole new nature.
और नई पैदाइश क्या है जी, कि नया जमीर मिलना.
It says that flesh gives birth to flesh, but the spirit gives birth to spirit.
कलामे खुदा में लिखा है रोमियो 8 बाब में के जिस्म जिस्म को पैदाइश देता है और रूह रूह को देता है.
The new birth is God's Holy Spirit creating it within us, the very nature of God again.
और नई पैदाइश क्या है जी, कि खुदा नए जमीर को हम में परवान चढ़ाता है ताकि हम नई शख्सियत हासिल करें.
Paul and John's friend Peter explained it this way.
पालूस और यहन्ना का दोस्त पत्रस इसे इस तरह बयान करता है.
In 2 Peter 1:4, you become partakers of the divine nature.
और लिखा है दूसरा पत्रस उसका पहला बाप उसकी चौथी आयत में वो कहता है कि क्या हुआ, वो कहता है जिनके बायस उसने हमसे. 2 Peter 1:4.
Yes.
दूसरा पत्रस उसका पहला बाप उसकी चार आयत आपके लिए पढ़ूंगा, जिनके बायस उसने हमसे कीमती और नहायत बड़े वादे किए ताकि उनके वसीला से तुम उस खुराबी से छूट कर जो दुनिया में बुरी ख्वाहिशों के सबब से है जाते अल्लाही में शरीक हो जाओ.
Each of us have within our souls, within our hearts, even within our bodies, the DNA of our parents.
हमारे जिस्म में, हमारी जान में, हमारे बदन में हमारे बाप और माँ के डीएनए पाए जाते हैं.
I can look in the mirror and say, "Hi, Dad," because I look like my dad.
मैं शीशे में खड़ा होकर कह सकता हूँ, "Hi, अब्बा," क्योंकि मैं अपने अब्बा जैसा नजर आता हूँ.
But I also think thoughts and I feel things and I realize my dad and my mom thought.
और जैसे मेरे माँ बाप सोचते हैं मैं उनकी तरह सोचता महसूस करता हूँ, एहसास रखता हूँ और समझता हूँ कि उन्होंने भी ऐसा ही सोचा होगा.
But I'll tell you this, more often now I look up and I say, "Hi, Father."
लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, मैं आसमान की तरफ नजरें उठाकर कहता हूँ कि ए आसमानी बाप.
Because I now have the DNA, I have the nature of my heavenly Father.
क्योंकि हमारी जात में उसकी अल्लाही जात का डीएनए पाया जाता है और हम उसके हैं.
I love what he loves.
इसलिए जो बाप को पसंद है वो मुझे पसंद है.
I pray for what he longs to happen in this world.
और मैं दुआ करता हूँ कि मैं वो ही करूँ जो वो चाहता है मुझे करने के लिए.
I weep for what breaks the heart of God.
मैं उसके लिए रोता हूँ जो खुदा के दिल को तोड़ती है बात.
I celebrate when he celebrates.
मैं खुश होता हूँ जब खुदा खुश होता है.
And every time there's a new child born into the family of God, we learn that there's a heavenly celebration.
और जब जब खुदा के खानदान में कोई नए सिरे से पैदा होता है तो बाइबल क्या कहती है जी, एक तौबा करने वाले के बायस आसमान पर क्या होती है जी, बड़ी खुशी होती है.
Hey, the new birth is the work of God's Holy Spirit.
और ये नई पैदाइश क्या है जी, खुदा का कलाम है जो रूह कुदस के वसीला से बोया जाता है.
Nicodemus said, wow, how can a person go back into mom's womb when he's old and be born a second time?
Nicodemus ne kaha, oye, ye kaise ho sakta hai ki koi apni maa ke pet mein dobara jaye aur dobara jaakar paida ho?
Jesus said, oh, Nicodemus, you got to be born both of water and of the Spirit.
Yesu ne Nicodemus se kaha, oh, Nicodemus, jab tak tu ruh aur pani se paida nahi hoga, tu naye sire se paida nahi ho sakta.
Says you should not be surprised at my saying you must be born again.
Yesu कहता है कि हैरान ना हो कि ये मैंने तुझसे कहा कि तुझे नए सिरे से पैदा होने की जरूरत है.
Being born again is not a lifetime process. It just happens, and it happens pretty suddenly.
नए सिरे से पैदा होना पूरी जिंदगी का क्या है जी सिलसिला नहीं है बल्कि एक सेकंड में ये होता है.
At 23:15 p.m. June 8, many years ago, I was born into this world.
जब मैं जा वक्त को देखता हूँ, तो क्या है जी 23:15 पर June 8 को मैं इस ज़मीन पर जिस्मानी तौर पर पैदा हुआ था.
And 11 years later, at about 9 o'clock at night, kneeling beside my bed, I was born again by the Spirit of God.
और 11 years later?
Yeah.
मैं 11 साल का था यानी कि 11 साल बाद अपने बिस्तर के पहलू में घुटनों पर बैठे हुए दुआ की और मैं नए सिरे से क्या हुआ जी पैदा हुआ जब मैंने यीशु को अपना निजात हिंदा कबूल किया.
I once asked a man if he was a Christian. I asked a man if he was a Christian.
मैंने उस बंदे से पूछा कि क्या तू एक मसीही है.
He said, well, yes, I think I am. At least I'm doing the best I know how. I'm trying to be.
मैंने उस बंदे से कहा कि क्या तू मसीही है. उसने कहा मैं हाँ कोशिश कर रहा हूँ बनने की कि मैं एक मसीही बन जाऊँ. मुझे पक्का नहीं पता कि मैं अभी मसीही हूँ या अभी मसीही नहीं हुआ.
I said, are you married?
मैंने उससे सवाल किया क्या तुम शादीशुदा हो.
Oh, said, yeah, yes, I'm married.
उसने कहा हाँ हाँ मैं शादीशुदा हूँ.
Are you sure?
मैंने उससे कहा वाकई तू शादीशुदा है.
And a little bit angrily, indignantly, he said, well, certainly I'm sure.
उसने गुस्से में इजहार करते हुए कहा हाँ जी मैंने कहा है मैं शादीशुदा हूँ.
And I said, well, I'm a little confused about why you don't know if you're a Christian, but that you know you're married.
मैंने उससे कहा मुझे समझ नहीं आ रही कि तू कह रहा है कि मैं मसीही हूं या नहीं हूं लेकिन तुझे पता है कि मैं शादीशुदा हूं.
I said there was a day and an hour when with your wife you said the vow.
वो दिन याद है जिस दिन तुमने उस वक्त अपनी बीवी के सामने कहा था कि मैं वादा करता हूं सुख दुख तकलीफ मोटी छोटी सारियां गल्लां.
And before that, you were not married, and afterwards, you were.
और उससे पहले शादीशुदा नहीं था, लेकिन वादा करने के बाद तो शादीशुदा हो गया.
And all the years follow, you've been living out your married experience.
और उसके बाद इतना अरसा गुजर चुका है कि तू अभी तक शादीशुदा है और अपने उस वादे के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर रहा है शादीशुदा होते हुए.
And I said, is there a time when you said to Jesus, "Yes, I take you. I want you."
कि एक दिन था जब तुमने कहा होगा कि यीशु मैं तुझे लेता हूँ कि अपनाता हूँ कि मेरी बीवी नहीं बल्कि मेरा खुदावंद हो और तूने यीशु को कबूल किया होगा उस दिन उस लम्हा कि वो तेरा निजात दहिंदा हो.
So what is man's part? What is our part to be born again?
और नए सिरे से पैदा होने में हमारा हिस्सा क्या है जी.
It's very small, actually.
हमारा जो करतार है वो बड़ा छोटा सा है.
Ephesians 2 says this.
इफिसियों 2 में ये लिखा है.
For by grace you have been saved through faith.
तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है.
And even this is not your own doing.
और ये लिखा है कि ये तुम्हारी तरफ से नहीं है.
It is the gift of God.
ये खुदा की बख्शिश है.
Even at that moment when you finally say yes to Jesus, you are responding to a work of grace that God is already doing in your heart.
जब कोई यीशु को अपना निजात हिंदा कबूल कर रहा होता है, तब भी क्या है कि उसका जो हिस्सा है वो क्या है, तोहफे को कबूल कर रहा है, क्योंकि ये सब कुछ क्या है, ये खुदा के फजल की बदौलत है.
But your part is to respond to the work of God's Holy Spirit in your life by saying, yes, amen, Jesus, I'm a sinner, and I accept what you've done for my salvation.
और हमारा हिस्सा क्या होता है, हाँ यीशु मैं कबूल करता हूँ, मैं गुनाहगार हूँ और मैं तुझे अपना निजात दहिंदा मानता हूँ, और हम निजात के क्या बन जाते हैं जी, वारिस हो जाते हैं.
One of the dangers of an old man talking is he has so many memories and stories.
एक बूढ़े बंदे से बात करने की जो सबसे खतरनाक बात ये है कि उसके पास बड़ी पुरानी कहानियां होती हैं.
I was talking to a man who belonged to a cult, to a strange sect. I was talking to a man who belonged to a cult.
मैं एक बंदे से बात कर रहा था जो एक बिद्दत का क्या था जी, मेंबर था.
And he was explaining to me his religion.
वो अपने मज़हब की मुझे तारीफ बयान कर रहा था.
And he claimed that it was a Christian religion.
मैं सोच रहा था कि शायद ये कोई मसीही मज़हब का क्या है जी, कोई फिरका है.
And he said, whether or not I get to heaven depends a little bit on Jesus and what he did on the cross. But about really 99% of it depends on me and what I do.
उसने कहा कि मैं आसमान पर पहुंचूं या ना पहुंचूं, इसका तल्लक थोड़ा सा तो जो काम मसीह ने सलीब पर किया है उस पर है, लेकिन 99% मुझ पर है कि मैं अपनी निजात को महफूज रखूं.
I said, well, the Bible says not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy He saved us.
Bible मुकद्दस क्या कहती है कि रास्तबाजी के कामों के सबब से हमको निजात नहीं बल्कि मिली, बल्कि उसके अपने रहम की बादौलत से.
And he said, well, maybe it's half and half. Maybe Jesus did half and I do half.
और उसने कहा हो सकता है फिर आधा मैंने किया, आधा यीशु ने किया, इसलिए मिलकर मेरी निजात पुख्ता हो गई.
I said, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord.
मैंने उसे कहा गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे यीशु में हमेशा की जिंदगी है.
And he said, maybe I had it backwards. Maybe Jesus does 99% and my life through conduct only provide 1% of my salvation.
फिर उस बंदे ने इस नतीजे पर पहुंचकर कहा, हाँ हाँ अब मैंने जान लिया, मैंने इसको उल्ट किया हुआ था. 99% यीशु काम करता है और 1% मैं इकरार करता हूँ, इसलिए सारा निजात का सेहरा क्या है जी, यीशु के नाम जाता है.
I said to him, imagine a metal chain, a steel chain with 100 links.
मैंने उसे कहा जरा सोचें कि एक लोहे की चेन जिसकी क्यों हो जी, हो जी 100 से ज्यादा कुरियां हो.
And I said, imagine that Jesus is going to take care of 99 of those links and you're going to take care of one.
मैंने उसे कहा अच्छा फिर सोचो कि उस चेन की जो 100 कुरियां हैं उनमें से 99 को तो यीशु संभाल के रखेगा और एक को तुम संभाल के रखोगे.
I said, whether that chain holds depends on who.
और मैंने उसे सवाल किया, यो चेन की जो क्या है जी, मजबूती किस पर मुनहसर है?
I said, Jesus is going to take care of his 99 links. So you're still saying, my salvation, my 1% is 100% of my salvation.
मैंने उसे कहा कि अगर यीशु 99% वो कुरियां संभालता है, तो तुम्हारी 1% क्या है जी? बेशक तुम निजात याफ्ता हो, लेकिन वो तुम्हारी 1% नहीं हो सकती, क्योंकि यीशु 100% है.
I said, if your 1% link fails, the whole chain breaks.
क्योंकि अगर तेरा 1% कुरी का जो हिस्सा टूटता है तो सारी की सारी चेन टूट जाएगी.
I said, to be a Christian, you've got to give up that last one link and say, Jesus is 100% of my salvation.
मैंने उसे कहा कि तुझे मसीही होने के लिए जो आखिरी कूरी जिसे तू पकड़े हुए है वो देनी होगी यसु की यसु को और कहना होगा कि 100% निजात का काम यसु मसीह ही का है, मेरा नहीं है.
He said, never will I give up my 1%. Never will I relinquish my part in my salvation.
उस बंदे ने कहा कि मैं हरगिज हरगिज कभी भी अपने 1% को नहीं छोड़ूंगा और अपनी निजात अपने पर ही रखूंगा.
And I do not expect to see that man in heaven.
इसलिए मुझे तवक्को नहीं कि मैं उस बंदे को आसमान पर देखूंगा.
For by grace you are saved through faith.
क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है.
Not of works, lest any of us should boast. That man wanted to boast. I did my part.
ताकि कोई फखर ना करे, क्योंकि वो आदमी एक कुरी पर क्या करना चाहता था जी, फखर करना चाहता था.
A true story.
ये हकीकी वाक्या है.
The year was 1860.
और ये वाक्या था 1816 का.
The world's most famous circus artist was a tightrope walker named Blondin.
दुनिया का सबसे मशहूर सर्कस में काम करने वाला बंदा जो क्या करता था जी, उस लोहे की रस्सी के ऊपर चलता था, जिसका नाम, what was his name?
Blondin.
उसका नाम था Blondin.
He was a Frenchman.
वो फ्रेंच था.
But he came to America to travel across America. And performance circuses.
वो अमेरिका में आया ताकि अपने उस हुनर का दिखावा कर सके, परफॉर्मेंस कर सके, कि वो लोहे की तार पर चल फिर सके.
America's most famous waterfall is called Niagara Falls.
अमेरिका का जो सबसे मशहूर पानी का झरना जो बहुत तेज और गहरा गिरता है उसे क्या कहते हैं? Niagara Falls कहते हैं.
Has anybody ever heard of Niagara Falls?
क्या कभी किसी ने Niagara Falls के बारे में सुना है?
It's not famous here, I guess.
तो या two of three, four.
Okay, it's high and very wide, hundreds of meters.
और 100 के हिसाब से, मीटरों के हिसाब से वो क्या है जी, ऊंचा है, गहरा है, चौड़ा है और गहरा है.
So Blondin thought, I'm the greatest performer in the world, but I'm not famous.
Blondin ने कहा कि मैं दुनिया का बड़ा मशहूर हूं, लेकिन मैं हकीकत में मशहूर नहीं हूं.
But if I could put a steel cable across these falls and walk across, they would know that I'm the greatest.
और Blondin ने सोचना शुरू किया कि अगर मैं एक कोने से दूसरे कोने पर स्टील की जो तार है उसकी लगा लूं, रोप लगा लूं, तो मैं उसके ऊपर से गुजरूंगा तो मशहूर हो जाऊंगा.
Now today you would have to sign up, get a whole lot of government permission, but 150 years ago you could just do it.
100-150 साल पहले आपको किसी की जरूरत नहीं थी कि आप उससे इजाजत लेते, लेकिन आप अमेरिका में इजाजत लेनी पड़ती है कि उस पानी के ऊपर से गुजरकर तार पर चल के जाया जाए.
He advertised in the papers and thousands of people came to see this fool try to walk across this cable.
और Blondin ने क्या किया जी, अखबार में इश्तहार दे दिया और हजारों के हिसाब से लोग इस बेवकूफ को देखने के लिए आए कि वो तार से पानी के एक कोने से दूसरी तरफ जाएगा.
And on a summer morning, he had a pole and he walked across Niagara Falls.
और गर्मियों के सीजन में उसने वो डंडा लिया जिससे अपना तवाजन दुरुस्त रखता था और तार पर चलना शुरू कर दिया.
He said, you come back next Saturday and I'll do something even better.
और जब वो गुजर गया तो उसने लोगों को कहा कि आप अगले हफ्ते आना, मैं इससे भी एक अनोखी बात करूंगा.
Over the next several Saturdays, he walked across the tightrope in different ways.
और उसने आने वाले हफ्तों में मुख्तलिफ तरीकों से क्या है जी, रस्सी पर चलकर आ जाकर क्या किया जी, लोगों को दिखाया.
Time he was wrapped up in a big sack so that he couldn't see anything, but he could still hold the pole, but without any vision, he walked across.
एक दफा उन्होंने क्या किया, उसके सर पर कपड़ा डालकर उसको क्या कीजिए, उसका चेहरा बांध दिया और उसने आंखें बंद करके उस रोप पर, उस रस्सी पर चलना शुरू कर दिया और वो कामयाब हुआ.
Then he finally, after doing different stunts, came the final Saturday.
और बाकी तमाम उसने जो करतब जब कर लिए तो आखिरी हफ्ता आया.
And a huge crowd came.
बहुत ज्यादा लोगों की तादाद आई.
And he just walked across very simply like he had done on that very first time.
और उसने बड़े एहतियात के साथ क्या जी चलना शुरू कर दिया जैसे उसने पहले दिन चला था.
And the crowd was sort of polite, but they thought this was not new.
लोगों की तादाद की जब तालियां क्या थी जी बड़ी धीमी थी तो उन्होंने कहा कि ये हमने पहले भी देखा है.
Then he said, I want to carry somebody across Niagara Falls on my back. How many believe that I could carry somebody across on my back?
और उसने कहा कि मैं एक और बात करना चाहता हूँ. मैं अपनी कमर पर किसी को लेकर नियाग्रा फॉल की एक तरफ से दूसरी तरफ जाऊंगा. कौन मेरा यकीन करेगा कि मेरे साथ इस तार के ऊपर चलकर जाए.
He was like a rock star. He was a performer. He got that crowd excited.
और वो एक रॉक स्टार था, एक मशहूर बंदा था. उसने उस सारी अवाम को हिला दिया और तहलका मच गया उस अवाम के दरमियान.
Do you believe I could take you across?
उनसे पूछना शुरू कर दिया कि क्या आपको यकीन है कि मैं ले सकता हूँ. लोगों ने कहना शुरू कर दिया हाँ हाँ हाँ.
Who's gonna go with me?
और उसने अगला सवाल किया कौन जाएगा.
Got real quiet.
खामोशी छा गई.
I think I saw you put your hand up. Do you believe I could take you across?
मैंने तुझे देखा था. तूने कहा क्या मैं तुझे लेकर जाऊँ. तूने अपना हाथ उठाया था.
I said, yeah, I believe you can do that.
बंदे ने कहा हाँ मैं यकीन करता हूँ तू कर सकता है.
Well, let's go, let's do it.
उसने कहा फिर आ आ आ चले.
Not me, I'm not going.
ना 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 मैं नहीं करूंगा मैं नहीं जाऊंगा.
And he asked several people and they all said yes, I believe you can do it, but no, I'm not going.
कुछ औरों ने भी कहा कि हाँ मुझे पता है कि तू कर सकता है. उसने कहा फिर आओ मैं तुमको लेकर चलता हूँ.
Finally, a man stepped out. A man did step forward.
और आखिर को एक बंदा आगे बढ़ा.
He said, "I'll go. Carry me across the falls on that road."
उसने कहा कि मैं जाऊंगा. मुझे लेकर जाओ यहाँ से उस तरफ.
If you go on the internet and Google Blondin,
अगर आप इंटरनेट पर जाकर Google की सर्च करें उसमें लिखें Blondin,
you will see pictures of this. There were Or photography did exist in 1860.
और 1816 की आपको तस्वीरें मिलेंगी जब ये वाकया हुआ था. गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं.
On that Saturday morning, 5,000 people maybe cheered and shouted, "We believe."
5,000 लोगों की तादाद लगभग उस सुबह हफ्ते की सुबह मौजूद थी जिन्होंने कहा हाँ हम यकीन करते हैं कि तू कर सकता है.
But only one person demonstrated his faith by being willing to trust his life to Blondin.
उन 5,000 लोगों की तादाद में से एक था जिसने कहा कि ना सिर्फ मैं यकीन करता हूँ कि तू कर सकता है बजे मुझे भी साथ लेकर जा सकता है. और उस बंदे ने अपना ईमान का इजहार किया अपनी जान को दांव पर लगाते हुए.
Ephesians 2, for by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, is the gift of God.
इफिसियों 2 बाप उसकी 8, तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है. ये तुम्हारी तरफ से नहीं है. किसकी तरफ से है जी. खुदा की तरफ से है ताकि कोई फकर ना करे.
And the faith that saves, the faith that saves is not the faith that says, "Oh, I find these Bible stories interesting. They're probably true."
ईमान ये नहीं कि हाँ मैं कहानियों को मानता हूँ ये हकीकी तौर पर बड़ी दिलचस्प और सच्ची हैं यकीन करता हूँ.
The faith that saves is it says, comes to Jesus and says, "I'm dead, I'm depraved, I'm delusional."
ईमान क्या कहता है? मैं यीशु तेरे पास आता हूँ, मैं मुर्दा हूँ, मैं गुमराह हूँ, मैं क्या हूँ? बेवकूफ हूँ, मैं गुनाहगार हूँ. और ईमान में उसके पास आता हूँ.
My heart is dark with sin. I need to be born again.
میرا دل گناہ کی تاریکی سے بھرا ہے یسوع مجھے ایمان سے نئے سرے سے پیدا ہونا ضروری ہے
Jesus, I trust my sins to the cross.
یسوع میں اپنے گناہوں کو تیری صلیب پر ڈھونکتا ہوں
And my salvation and my future to you.
اور اپنی نجات اور مستقبل تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں
I want to be born again by your spirit.
میں تیرے پاک روح کے وسیلہ سے نئے سرے سے پیدا ہونا چاہتا ہوں
I want to be the bride of Christ.
میں مسیح کی دلہن ہونا چاہتا ہوں
I want to be a child of God.
میں خدا کا بیٹا بننا چاہتا ہوں
I want to walk with and follow Jesus.
اور میں یسوع کے ساتھ اور اس کے پیچھے چلنا چاہتا ہوں
And you don't even have to say all those things. If you say half of them, you'll be saved. You'll be born again.
اور آپ کو یہ سب کچھ بھی کہنا نہیں پڑے گا صرف سادہ سا اگر اقرار کر لیں گے تو آپ نئے سرے سے پیدا ہو جائیں گے
So Ephesians 2 says, remember your past. You were dead, you were hopeless, you were separated from God and Christ.
افسیوں دو باب ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم یاد رکھیں ہم مردہ تھے گناہ میں تھے دور تھے تاریکی میں تھے اس نے اپنے فضل سے ہمیں زندہ کیا
But God who is rich in mercy in his love made us alive
مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے اس محبت کے وسیلہ سے جو ہم سے کی جب ہم گناہگار ہی تھے
How much did you do when you were born the first time you came into this world? How much did you contribute?
جب جسمانی طور پر آپ پہلی دفعہ زمین پر پیدا ہوئے تھے پیدا ہونے کے سلسلے میں آپ نے کتنا کام کیا تھا
But all you did was put your head in the right direction.
آپ کا جو حصہ تھا جب ماں کے پیٹ سے باہر آ رہے تھے تو قدرتی نظام کیا تھا آپ نے صرف اپنا سر باہر نکالا تھا
All we do in our second birth is to turn our head to the face of Jesus.
پہلی پیدائش میں ماں کے پیٹ سے سر باہر نکالتے ہیں دوسری پیدائش میں اپنے سر کو آسمان کی طرف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں یقین کرتا ہوں ہللویہ ہللویہ یسوع مسیح کے نام کی ہللویہ خداوند خدا تیرا شکر ہو اس سارے پیغام کے لیے کہ ہم پہلی پیدائش میں اپنی ماں کے پیٹ سے نکلتے ہوئے اپنے سر کو اور دوسری پیدائش میں جو نئی پیدائش ہے اپنے سر کو تیری طرف کرتے ہیں اور تو ہمیں اپنے خاندان کا رکن شاہی کاہنوں کا فرقہ بناتا ہے چو تیرے بندہ کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں تیری تعریف کرتا ہوں یسوع کے نام میں آمین آمین ہللویہ بریک نہیں کیا جی پرستش کریں گے آ جاؤ پھر یسوع مسیح دے سپاہی ذرا قدموں دے کھڑے ہو یہ چاہ بن رہی ہے دے جی ہللویہ ہللویہ ذرا پیر پاؤں ہلا کے تے سور والی چاہ بن دی پئی ہے جان صاحب سور والی اچھا ٹھیک ہو گیا کہ 10 منٹ کی بریک کرنی شاپ سے دے دو ایسا کرتے ہیں جی 10-15 منٹ کی بریک لے لیں ہاں جی وہ بند کر دیں شکریہ جی